G. या अल्लाह क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, मेरे लिए कोई हुक्म?
तुम्हें थाने चलना होगा।
थाने किस लिए? ये मोहल्ले के लड़कों का एक छोटा सा इख्तलाफ है, हम आपस में हल कर लेंगे, है ना आदि साहब?
सही बात है, पुलिस तो लुच्चे लफंगों के लिए होती है, हमारे लिए तो बदनामी का बाइस है।
यही तो।
लेकिन हाल ही में मैंने जेल की जो सजा काटी है, दोबारा नहीं चाहता था कि जेल की सलाखों के पीछे जाऊं, वरना तुम्हारे बदन में एक भी हड्डी सालिम नहीं छोड़ता।
क्या करें, तुम इन साहब को रुख्सत कर दो, जाएं, हम दोनों मिलकर हिसाब किताब करते हैं ना, मैं तुम्हें मुतमईन कर दूंगा, खुदा तुम्हारा भला करे।
देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अब इस एक दफा जब मैंने कानून की पनहा ली तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे मारो।
ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, थाने चलो, चलो जल्दी।
चलेगा क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट रुकिए। हाथी भाई देखिए, हमारा और आपका थोड़ा सा फर्क है, हम महले के इज्जतदार लोग हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इज्जतदार नहीं हैं, लेकिन फर्ज करें कि मैं थाने चला जाता हूँ तो इस्माइल की बीवी हमारे पीछे क्या क्या किस्से बनाएगी। अब इसको भी छोड़िए, अगर मेरे अब्बू जान को पता चला कि मुझे पुलिस ले गई है तो उनको उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरी बात मान लो यार, प्लीज।
इंस्पेक्टर ले जाएं इसे।
अरे आप चलिए, मैं आपसे दो कदम पीछे आ रहा हूँ। अरे कसम से मैं आ रहा हूँ, अरे छोड़िए छोड़िए भाई, मेरा गिरेबान तो छोड़िए, इस तरह से तो और भी बुरा है। अच्छा ठीक है,
रुक जाओ, इसको कहाँ ले जा रहे हो?
जनाब मैं एक मिनट में जाके आता हूं। भाई सैफी जरा इस तरफ आना तो।
क्या?
इस तरफ।
अच्छा
आप यहीं पर तशरीफ रखिए, एक मिनट।
तुम इन्हें क्यों लाए हो?
डरो मत, तुम्हारे इस मंगनी के सामान के बारे में कुछ नहीं बताया।
अच्छा तो फिर इन्हें यहां पर क्यों लाए हो?
थाने में समझ जाओगे। देखो तुम्हारे फायदे में होगा जो कुछ भी मैं कहूँ उसकी तायद करना, वरना कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारी सारी करतूत बता दूंगा।
इंस्पेक्टर साहब यही है, इसको गिरफ्तार करें।
आओ चलो चलें।
कहाँ ले जा रहे हो इसे सैफी? असद आज मेरा शिकार है।
एक मोहल्ले में दो थाने नहीं होते। घबराएं नहीं शहीन मैडम, सैफी को कुछ नहीं होने वाला। तुम अपनी बहन को फोन करके सब कुछ मालूम कर लेना।
मीरजाई साहब, पहले हमने मुलजिम को पकड़ा है, मेहरबानी करके पहले हमारा काम निपटाएं।
ठीक से बैठो, ये तुम्हारी खाला का घर है क्या? ये तो बताओ, क्या तुम मानते हो इन साहब की बाइक तुम बिना इजाजत के ले गए और एक्सीडेंट करवा दिया?
मजबूर था जनाब, वरना ये सैफी हाथ से निकल जाता।
इनकी शिकायत पर बाद में सोचेंगे।
नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों का केस तो आपस में बहुत उलझा हुआ है, दोनों पर एक साथ गौर करना होगा।
तुम मेरा जवाब दो, मानते हो कि नहीं मानते हो?
मानता हूं मैं, लेकिन मैंने इनको बता दिया था कि इनकी बाइक को इंस्टॉलमेंट पर खरीद लूंगा, अब भी अपनी बात पर कायम हूं।
तो फिर चुराया क्यों?
मैंने अर्ज किया ना इंस्पेक्टर साहब, अगर ना चुराते तो सैफी हाथ से निकल जाता।
ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है जनाब, ये जनाब मेरे 15,200 तुमान के मकरूज हैं। मैं 50वीं मर्तबा इनके घर अपने पैसे लेने के लिए गया, देखा जनाब मेहरबान हो गए हैं, कहने लगे सैफी चलो मैं तुम्हें पहाड़ी पर ले चलता हूँ, वहां तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा, तबीयत खुश हो जाएगी, बहुत मजा आएगा और तुम्हें पैसे भी वहीं दे दूंगा। मैंने कहा कि भाई असद मुझे तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, बस तुम पैसे दे दो वही बहुत है। कहने लगे नहीं नहीं मैं तुम्हारा मकरूज हूँ, तुम्हारे दिल से नाराजगी को दूर करके रहूंगा। मैं अपने जुड़वा बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मुझे पता होता कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है तो मैं कभी ना बैठता। मुख्तसर ये है कि मुझे पहाड़ी पर ले जाकर वहाँ इन साहब ने डंडा निकालकर मुझे मारना शुरू कर दिया, धें धें, और मुझे बीच सड़क पर छोड़ दिया और खुद वहाँ से चला गया जनाब। और मेरी जेब में एक छोटा सा सोने का कंगन भी था। इसने उस पर भी रहम नहीं किया और उसे मेरी जेब से निकाला और लेकर चला गया। जब मैंने देखा कि ये हालत है तो मैं इलाज के लिए डिस्पेंसरी चला गया, फिर पैसों के बंदोबस्त में लग गया। आप जरा ये रसीद देखिए, मुझे 11 हफ्ते के इलाज के लिए पैसे चाहिए। देखिए इस कमीने ने कैसे मुझे मारा है। इसके ऊपर जो मेरा कर्जा है उसके अलावा इस चोट के बदले मैं अपनी दियत माफ नहीं करूंगा।
तुम इनकी बात को मानते हो?
जाहिर है कि नहीं।
यानी तुमने इन साहब को बीच सड़क पर डंडे से नहीं मारा?
मैंने मारा, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि मारो।
तो इन्होंने खुद कहा कि मुझे डंडे से मारो?
जी, ये पागल पागल नहीं है, कहा मारो, अपने दिल की भड़ास निकालो।
क्या तुमने इनसे उधार नहीं लिए? तो फिर दिल ठंडा करने का क्या मतलब बनता है?
ये मेरे और इनके दरमियान एक राज की बात है। झूठ बोल रहा है, हमारे दरमियान राज की कोई बात नहीं है।
और सोने का क्या, तुम मानते हो कि तुमने इनकी चोरी की है?
पहली बात तो यह है कि जेब से नहीं चुराया, इन्होंने खुद दिया। दूसरी ये कि ये मेरी माँ का है।
तुम्हारी माँ की चूड़ी क्या इनकी जेब में थी?
मैंने खुद इन्हें दी कर्ज की जमानत के तौर पर। झूठ बोल रहा है ये। हम आपस में जो कुछ भी लेना देना करते हैं उसके बदले में रसीद दिया करते हैं। कोई रसीद वसीद नहीं थी।
जो बातें तुमने अब तक बताई हैं वो सारी बातें दर्ज कर ली गई हैं और फाइल को कल अदालत भेज दिया जाएगा।
अदालत से बिल्कुल मत डरना असद, मुझे कानून के सारे दांव पेच आते हैं। मुझे तुम्हें बाइक का पूरा पैसा देना है और एक लंबी दियत भी सैफी को। कुछ दिन बाइक की चोरी के सिलसिले में हवालात में रहोगे और एक हफ्ता भी बदमाशी और मारपीट के बदले में रहोगे। अगर इससे पहले किसी जुर्म में नहीं पकड़े गए हो तो अगली पेशी तक जमानत के पैसे देकर आजाद हो सकते हो।
ये है।
हेलो हेलो, ये मोहम्मद भाई का कहवा खाना है। मोहम्मद भाई तुम ही हो? सलाम अलैकुम, असद हूँ। असद असद, अरे असद हूँ ना भाई, असद पनपे, आप ठीक हैं? हेलो मोहतरमा, आपकी लाइन हमारी लाइन से मिक्स हो गई है। हेलो हेलो मोहतरमा, आप फ़ोन काट रहे हैं, आप लाइन पर आई हैं। मोहतरमा मैं थाने में फंस गया हूँ, बड़ी मुश्किल से एक सिक्का मिला है, प्लीज रख दीजिए फोन को। हेलो, अरे मेरी बहन मुझसे बहस ना करो। मोहम्मद भाई मेरी आवाज सुन रहे हो? मोहम्मद भाई मेहरबानी करके अहमद तक मेरा एक पैगाम पहुंचा दो। हाँ हाँ अहमद, अगर देखा तो उन्हें बता दें कि असद उस पिकअप के मामले में फंस गया है। लेकिन अगर मोहतरमा, अगर आप फोन नहीं काट रही हैं तो दो मिनट का सब्र कर लीजिएगा, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, फिर जो बोलना है बोल लीजिए। मोहम्मद भाई अगर अहमद को देखा तो बोल दो कि असद फंस गया, लेकिन अभी मामला ज्यादा नहीं बढ़ा है। हाँ 40,000 जमानत के लिए चाहिए, जरा जल्दी से थाने आ जाएं, मुझे निकालें ताकि पिकअप लेने जाएं।
तुम कुछ नहीं बोलोगे? गाली ही दे दो।
बकवास बंद करो सर, बंद करो अपनी बकवास। 10 सालों से मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूं लेकिन आज तक नहीं फंसा। गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि स्कूल के जमाने से तुम बेवकूफ रहे हो, तुम्हारा हाल पता है। ये तो मैं हूं जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में रहम आया और तुम्हें बागडोर सौंप दी, और मैं यूं ही तुम्हें हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं सैफी नहीं हूं जो रोज तुम्हारे दरवाजे पर आकर हाथ पैर जोड़ता रहूं। अगर मेरी पिकअप वैन पर एक भी लकीर पड़ी तो तुम्हारा वो हल करूंगा तुम सोचते रहोगे।
यार कहा ना, खाई में गिर गई।
ठीक एक मर्तबा बोल दिया, समझ गया, अपना मुंह बंद रखो। स्मगलिंग का एक गाड़ी सामान खुदा के हवाले छोड़कर सो गए हो? अगर किसी ने देख लिया और जाकर खबर कर दी तो तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, सारी बात मुझ पर आएगी और पकड़ा जाऊंगा मैं बेचारा।
एक बात बताओ, बताऊं या ना बताऊं?
आप बको भी,
आज ही थाने में जाकर रिपोर्ट करा दो कि रात को तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है। इस तरह से अगर गाड़ी मिल भी गई तो तुम नहीं फंसोगे। सच में अहमद, तुम अपनी गाड़ी का पैसा किस्तों में लेने को तैयार हो?
असद मुंह बंद रखो वरना एक थप्पड़ जड़ दूंगा।
अगर अपना पैसा लेना चाहते हो तो यही तरीका है। 170,000 सैफी के हैं, दूसरी जानिब आयदिन की बाइक के पैसे हैं जो कि उसे हमें देने हैं, दूसरी तरफ दियत के पैसे, हजार लोगों के कर्जे हैं जो कि देने हैं। अगर तुम होते तो नकद दे सकते थे।
मुझे अपना पैसा निकालना अच्छी तरह आता है, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुमने तो कमाल ही कर दिया असद, तुम कैसे आदमी हो? ए ए ए ए ए बाप रे बाप, तुम्हारे चक्कर में क्या बेवकूफी कर दी।
अच्छी बात यह है कि ऐसी जगह गिरी है जो मुश्किल से नजर आती है।
ये कूड़ा कवाड़ क्या उठा रखा है?
सालिम बचा हुआ माल है।
बेकार सामान में सालिम और गैर सालिम क्या होता है? ये जुर्म का सबूत है, रख दो एक तरफ। लाओ मुझे दो, दो मुझे।
पता है इन चीजों के लिए मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी? कमबख्तों ने मुझे कश्ती से नीचे लटका दिया था।
दे दो मुझे।
सिर्फ एक अबू जान के लिए खरीदा है, रात को अपनी बातों से उनका दिल दुखाया, ये उनको दूंगा शायद राजी हो जाए।
क्या है ये?
बटन वाला टेलीफोन है।
मतलब?
एक तरह से नहीं था इसका फोन।
अगर काम नहीं करता है तो ना देना ज्यादा बेहतर है। ला दो मुझे।
अरे भाई, उस गाड़ी में कोई मर गया है क्या?
अरे नहीं चचा,
ड्राइवर ये है जिसे मैंने बचा लिया।
अगर जरूरत है तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊं?
तुम्हारा शुक्रिया।
बच्चों इनको जरा देखना, मैं अभी आता हूं।
चलो जल्दी चलो।
कैसे हो बच्चों? शाबाश शाबाश।
बच्चे ये भेड़ कैसे किलो है?
आजाद
हाँ
चलो।
एक चाय असद के लिए ले आओ और एक हुक्का इमाद के लिए।
अब क्या करना है इमाद?
फिलहाल पियो तो बताता हूँ।
मैं हुक्का पीता हूँ क्या?
मैंने सोचा शायद आखिरी लम्हों में इसका मजा उठाते चलूं।
मेरी किस्मत में मजे कहाँ? भाई ये आखिरी लम्हों से तुम्हारा मतलब क्या है?
आखिरी लम्हों का मतलब हुक्का पीने के बाद सीधे थाने चलेंगे, अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे और कंपनी के कागजात निकाल लेंगे।
अगर मैं जेल गया तो तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा? इसी को कहते हो कि पैसा वसूल करना आता है?
मेरा फैसला बदल गया है, इंतजार करूंगा जब तक कि आजाद ना हो जाओ।
मैं अगर अंदर चला गया तो बाहर आने की कोई गारंटी नहीं है?
ना भी निकले तो कोई बात नहीं, पिकअप के पैसे माफ कर दूंगा।
ऐसा क्या हुआ कि मेहरबान हो गए?
तुम्हारे खून का प्यासा, लेकिन काफी सोचने के बाद ये फैसला लिया है कि कीड़े लगे दांत को निकलवाना ही बेहतर है। तुम मेरे आसपास ना रहो तो ही अच्छा है, ताकि मैं तुम्हें ढूंढूं नहीं। वो पिकअप वैन मेरी बेवकूफी की वजह से गई, इसलिए अब बेवकूफों से लेन देन नहीं करूंगा।
ये तो अच्छा है कि दोस्ती की खातिर तुमने पिकअप के पैसे माफ कर दिए, लेकिन मुझे मोहलत दो ताकि सैफी का दिया बाइक का पैसा और सूद के पैसों का भी कुछ इंतजाम कर सकूं, समझे?
सबसे पहले ये कि तुम्हारी मेरी कोई दोस्ती नहीं है और आज के बाद से सिर्फ दुश्मनी ही रहेगी। दूसरी ये कि तुम इतने पैसे इकट्ठा कर ही नहीं सकते हो। तीसरी ये कि जो मेरी पिकअप वैन खाई में गिरी है, असद कंपनी के लिए तुम जवाबदेह होगे, ना कि मैं।
ये समद कंपनी है कौन?
तुम्हें इससे क्या मतलब है? चाय पियो, देर हो रही है।
हारी किस्मत, ऐसा लगता है हमें घुटी ही बदकिस्मती की पिलाई गई है। ठीक है भैया, जैसा तुम कहो। एक घंटे के बाद थाने के सामने मिलेंगे।
बैठो यहाँ, मुझे लगता है तुम यहाँ से भागना चाहते हो।
भाग के जाऊंगा कहाँ? मैं किन पैसों से जाऊं? घर जाने दो, बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई जरूरी काम पेश आ गया है, आबादान जा रहा हूँ। आजकल घर के हालात ठीक नहीं है, मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? जाऊं भाई?
कहो जाहिदान, आबादान में जंग है, तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा।
शाबाश।
भाई असद की दिलेरी जिंदाबाद।
आयदिन ने तुम्हारी रात की बदमाशी का किस्सा हमें सुनाया है, शाबाश, बहुत अच्छे।
जेल की फिक्र मत करना, जेल में इंसान मर्द बनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
بسم الله الرحمن الرحیم۔ لگتا ہے کام کر رہا ہے، واہ کیا بات ہے۔
ہیلو، السلام علیکم۔ اب معاف کیجیے گا، میں گھر کا ٹیلی فون ٹیسٹ کر رہا تھا، غلطی سے آپ کا نمبر لگ گیا، معاف کیجیے گا۔ اوکے، شکریہ۔ بابا جان کام کرتا ہے، آئیں کسی کو فون کر کے دیکھ لیں، کیا کوالٹی ہے۔ لیجیے ابو جان، ابو جان۔
اس کے اندر کیا خوبی ہے جو دے رہے ہو؟
صلح کرنا چاہتا ہوں۔
کیا ہم بچے ہیں جو ناراض ہوں گے؟
اب آپ ناراضگی کہیں یا کچھ اور، کیونکہ جب کوئی چھوٹا غلطی کرتا ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کو تو معافی مانگنی چاہیے۔
کون سی غلطی؟ تم نے تو اپنے دل کی بات کہی تھی بیٹے۔
دل کا بیڑا غرق جو غلط بات کرے۔ بابا جان، آپ ہر حالت میں ہمارے بزرگ ہیں، ساری عمر۔ آئیے آپ کا چہرہ چوموں اور سب قدرتوں کا فاتحہ پڑھوں، تابعدار ہوں، آپ ہاتھ چومتا ہوں۔ آبادان جا رہا ہوں۔
کہاں؟
زاہدہ۔
کس کام کے لیے جا رہے ہو؟
کسی نے ایک اچھے سے کام کا آفر کیا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے ہو سکے گا یا نہیں۔ آج ہی اپنا سامان باندھ کر جانا ہوگا۔
اتنی جلدی جا رہے ہو؟
ڈرتا ہوں کام ہاتھ سے نہ نکل جائے۔
ارے جو سامان تم نے خریدا تھا اس کا کیا ہوا؟
سامان بک گیا۔
بک گیا؟ تو پیسے کہاں گئے؟
چیک لیا ہے، راستے میں چیک بھی نقد کر لوں گا۔
اسی طرح تو چھوڑ کر نہیں جا سکتے نا۔ اسماعیل صاحب کے ساڑھو کو اپنے پیسے چاہیے۔ عباس صاحب کے بیٹے محمود کی بائیک صحن میں ٹوٹی پڑی ہے، بنا کر اس کو واپس کرنا ہے، دینا ہے یا نہیں؟ میں تم سے بول رہا ہوں، سن رہے ہو میری بات؟
یا میرے بالا،
کیا ہوا؟
امی جان، امی جان، دل پہ زور پڑ رہا ہے، کیوں سر چکرا رہا ہے؟
تم سے 100 دفعہ کہا ہے کہ سامان کا 3-4 کوپن اکٹھا ہو جائے تو اسد کو دے دو، تاکہ سویرے ملا صدرہ سے جا کے لے آئے، اس طرح آسان رہے گا۔ لیکن سنتی کہاں ہو، لمبی لمبی لائنوں میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہو اور تھک جانے کے بعد اپنا یہ حال کر لیتی ہو۔
لیجیے امی جان، لیجیے، لیجیے۔
لائن میں کھڑے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔
تم ہر دفعہ یہی کہتی ہو۔
لائن کی وجہ سے نہیں ہے فضل علی۔
تو پھر کس وجہ سے ہے؟
لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہے۔
کیا لوگوں کی باتیں ختم ہونے والی ہیں؟ جو بھی کرو لوگوں کی باتیں تو ہوتی ہی ہیں، سمجھی میری بات؟ تمہارا بیٹا اب سدھرنے والا ہے۔ اسے ایک کام ملا ہے، یہ اب آبادان جانے والا ہے۔
آبادان نہیں، زاہدان۔
زاہدان نہیں، جیل میں۔
امی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟
آج جب میں سامان کی لائن میں کھڑی تھی تو اسماعیل صاحب کی بیوی کو دیکھا، سب عورتیں ان کے ارد گرد جمع تھیں اور وہ ان کو وہ باتیں سنا رہی تھیں جو انہوں نے فون پر سیف اللہ کی بیوی مہین سے سنی تھی۔
بیٹھو، जैसे कि क्या सुना था?
जैसे ये कि असद का सारा सामान स्मगलिंग का था, और ये कि उसका सारा सामान दो नंबर का और नकली था, और ये कि डंडा उठाया, और ये कि जितना हो सकता था उसकी पिटाई की, इसलिए आज इसको थाने ले गए, और अब भी ये जमानत पर आजाद है, और जमानत भी हेमाद ने दी है, जो कि शाहपुर पंजावरी का बेटा है, जिसके बारे में सब जानते हैं कि उसका काम धोखा देना और दो नंबर का है। तुम्हारा बेटा हेमाद के साथ मिल गया है, स्मगलर और धोखेबाज बन गया है।
ये बातें जो तुम्हारी अम्मी बता रही हैं, लोगों की गढ़ी हुई बातें हैं या सच्ची हैं?
हकीकत तो कुछ और है, लेकिन ये ठीक है कि सामान नकली था, सेफी को भी पीटा और अहमद की जमानत से बाहर आया। अभी थाने जा रहा हूं खुद को हवाले करने, ताकि वो अपनी जमानत को वापस ले ले।
सलाम। क्या हुआ? सबके चेहरे पर हवाई क्यों उड़ रही है? अम्मी जान, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं?
अपने भाई से पूछ लो।
क्या हुआ है असद?
मोहल्ले की चुगलखोर ने वो सब बातें जो मैंने तुम्हें बताई थी पूरे मोहल्ले में फैला दी।
ओफो, सारी की सारी?
ये रोटियां ठंडी हो जाएंगी, जाओ पहले रख के आओ।
तुम्हें क्या हुआ?
आओ यहाँ बैठो।
रोटी खराब हो जाएगी।
आओ बैठो।
खराब हो जाएंगी?
जी अच्छा।
असद ने तुम्हें कुछ इशारा किया है, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ बातें मालूम नहीं हैं। कौन सी बातें हम नहीं जानते?
अब्बाजान, मुझे क्या पता कि इस्माइल की बीवी ने क्या बताया है और क्या नहीं बताया।
जो जानती थी कह चुकी, जो नहीं जानती थी वो नहीं बताया। बाकी तुम बताओ।
असद भाई, तुम खुद जानते हो कि मैं किसी का राज नहीं खोलती, लेकिन देख रहे हो मजबूर हूँ।
किसने कहा उठने को? बैठो तुम अपनी जगह। मैं सुन रहा हूँ।
बाबा जान, असद खुद जानता है कि उसने गलती की है ना असद? वो पैसे जिनसे बंदरगाह जाकर सामान ले आया, वो थे, यानी तकरीबन वो कर्ज के नहीं थे बल्कि किसी से।
तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है।
ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा, तुम किस घराने में पले बड़े हो जो अपने घर में हराम माल लाना चाहते हो? तुमने जो कुछ भी किया, मैंने कहा जाने दो, ठोकरे खाएगा खुद सुधर जाएगा। मैं तुम्हारे इस काम पर कैसे चुप रहूं और आंख ना करूं?
असद, असद उठो।
क्या है?
फजले अली गली में तुम्हारे मुंतजिर हैं।
गली में ही क्यों?
चले
कहां?
हसन साहब की दुकान पर।
अब्बाजान जरूरत नहीं, आप मेरी खातिर।
तुम्हारे लिए नहीं जा रहा हूं, मैं अपने लिए हुज्जत तमाम करना चाहता हूं कि अगर दोबारा गलती की तो तुम्हें बख्शूंगा नहीं। चलो चले।
फजले अली साहब, आप इस मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और हम सबको आपकी नसीहत की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि खरीदूँ बेचूँ और दो पैसे कमाऊँ, लेकिन मेरा एक फ़र्ज़ और भी है जो मैं आपके लिए वाज़े करना चाहता हूँ। इस वक्त ज़मीन बेचने का मौका बिल्कुल नहीं है। ये सही है कि अभी जायदाद की कोई कीमत नहीं है। ये भी जानता हूँ कि पैसों से आदमी 100 किस्म के काम कर सकता है और एक ही रात में 1 साल का फासला तय कर सकता है, लेकिन ये हालत हमेशा ऐसी तो नहीं रहेगी। ये जंग जो हम पर लादी गई है, अगर साल में ख़त्म ना हुई तो अगले साल ख़त्म होगी। इसको आखिर ख़त्म होना ही है। जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो लोग तामीरात की फ़िक्र में लग जाएंगे। इसका मतलब होगा तामीरात और आबादकारी के बाज़ार की रौनक, जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। तामीर के लिए किसी वीरान ज़मीन या पुराने घर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह जो आप बेचना चाहते हैं। फजले अली खां, आप मेरी आज की हालत पर मत जाएं। इस वक्त मैं एक छोटी सी दुकान पर बैठा हूं और लोग मुझे अहमियत नहीं देते, क्योंकि मेरे पास जो कुछ था मैंने सारा बेच डाला और उन पैसों से जगह जगह 100 मीटर 200 मीटर के पुराने घर और ज़मीनें खरीद। स्टेडियम के अतराफ से लेकर लेविजान की पहाड़ियों तक, उस तरफ गर्मियों में सन्नाटा रहता है और दूसरी तरफ सर्दियों में कुतुब जुनूब बन जाता है। आजकल की हालत गैर फितरी है कि जिसमें एक 500 मीटर की ज़मीन की कीमत 2 कारों की कीमत के बराबर है। ये मुल्क तो सारी उम्र ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन हर चीज़ अपनी असली कीमत पर तो आ ही जाएगी। यही हसन भाई जो इस वक्त आपके सामने बैठा है, 10 साल बाद मैं भी इस शहर में बादशाहत करूँगा। अगर बताऊँ तो शायद आपको हंसी आए, लेकिन बता देता हूँ, वो दिन देख रहा हूँ कि मेरा सरमाया 100 मिलियन से ऊपर होगा। क्या अभी बेचना चाहेंगे आप?
नहीं हसन भाई, पशेमान हो गया। बहुत शुक्रिया कि आपने हकीकत समझा दी। चलें,
अगर फौरी पैसा देना चाहो तो कितने में खरीदोगे?
आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। क्यों फौरी से आपका मतलब? कब तक?
आज बैंक बंद होने से पहले तक।
आपकी जमीन की कीमत 1,02,30,000 बनती है। आमतौर पर बेचने में 6 महीने लग जाते हैं। पूरी कीमत नकद लेनी हो तो 9,50,000 से ज्यादा कोई नहीं देगा। अगर मैं लेना चाहूँ तो 8,90,000 से ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास कि आपको दूँ। कागज पर दस्तखत करने के बाद 1,00,000 का चेक आपको दूंगा और आप कैश करा लेंगे। बाकी पैसों के लिए 2-3 महीने का वक्त देंगे, मैं अदा कर दूंगा।
ये बहुत कम है बजान, ये काम ना करें।
बयाना 2,50,000 कर दो। इसके बदले मैं रजिस्ट्रार के दफ्तर जाकर मकान तुम्हारे नाम कर दूंगा, जो कि सनद के तौर पर होगा। बाकी पैसे भी 2-3 महीने बाद दे देना। अलबत्ता रजिस्ट्री का पैसा भी तुम्हारे जिम्मे होगा।
मामले का तरीका ये नहीं है फजले अली खान। अब जबकि मैं आपको बेचने से नहीं रोक सका तो कम से कम सौदे को अपने तरीके से आगे बढ़ने दें।
मुझे तो बेचना ही है, बाकी के पैसों के सिलसिले में मुझे तुम पर भरोसा है। अब कहने को कुछ नहीं है, रही बात मकान की, तो मुझे कुछ मोहलत दो ताकि मैं दूसरा घर ढूंढ लूं, उसके बाद खाली कर दूं।
लीजिए अपने पैसे।
बहुत बहुत शुक्रिया।
लीजिए यहां पर दस्तखत कीजिए।
जल्दी वापस आ जाना।
आप नहीं आ रहे?
खुदा ना करे ऐसी जगह मेरा कदम पड़े। ये लो।
एक लाख सत्तर हजार बने।
हाँ उतना ही है।
नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा हिसाब 1,87,000 बनता है।
सिर्फ एक ही हफ्ता तो लेट हुआ है।
एक हफ्ते को एक महीना हिसाब किया है, उस पर जुर्माना भी लगाया है।
क्यों?
ताकि तुम्हें ये सबक हासिल हो के जब चाहो ले लो और जब चाहे वापस करो।
अगर ना देना चाहूं तो?
क्या ऐसा हो सकता है कि ना दो?
मेरा दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। अबूजान, मैंने अगर पैसा सूद पर लिया तो आपको रंजीदा करने के लिए नहीं था, बल्कि मैं तो अपने पांव पर खड़ा होना चाहता था। मर्सिया और अम्मी जान से ले लेके और वापस ना करके थक गया था। आखिर इंसान कब तक अपने खानदान पर बोझ बना रहेगा? आप सुन रहे हैं ना अबूजान, सूद पर लिया था कि मर्जिया के पैसे उसके जहेज के लिए बच जाए। सूद पर लिया था कि अम्मी जान को कूपनों की लाइन में खड़े होने और एक एक दाना बचाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। अब बजान बखुदा मैंने इन चीजों के लिए सोचा था, वरना मैं पागल था जो खुद को सूदखोरों के चंगुल में फंसाता। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप ही तो कहते थे कि रूठना बच्चों का काम है। अबू जान, मैं आपका गुलाम, यकीन करें कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। आप मेरे साथ ऐसा ना करें। बखुदा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा ना करें। अब कौन अम्मी जान से आंखें मिलाने की हिम्मत करेगा? बखुदा आप हक बजानी होंगे कि मुझे घर में खत्म न रखने दें। मैं भी कैसा जानवर हूं बाबा जान, कैसा हैवान हूं मैं, इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं।
अरे कुछ तो बोलिए अब्बा जान, एक तमाचा मारकर अपने भड़ास तो निकाल लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूं अब्बा। ये लीजिए, ये मेरा चेहरा और ये आपका हाथ। एक थप्पड़ मारे हम दोनों का दिल ठंडा हो जाएगा। आपने मारा पीटा नहीं, तभी तो मेरी ये हालत है। अगर करीम बाबानी के बाप की तरह बैट निकालते और मुझ पर बरसाते तो मेरा ये हाल ना होता। आपको अम्मी की कसम, मारिए मुझे, मारिए मारिए अब्बूजान, मारिए 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 मारिए। अब्बूजान, 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 अब्बूजान। Ha 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 ha!